कृष्ण कथा इतनी सुंदर है कि वही कथा बार बार भी अगर सुने तो वो घिसा पिटा नहीं लगता। परीक्षित महाराज भागवत में बताते हैं कि कृष्ण कथा नित्य नव नवायमान है, जितना भी आप सुनेंगे उतना ही ताजा लगता है, फ्रेश नवीन लगता है, क्योंकि भगवान ही नवीन है, सदा नव यौवन अवस्था में रहते हैं, किशोर अवस्था में। इसलिए हम कितनी बार ये सुन चुके हैं कि श्री कृष्ण गायों को चराने ले जाते हैं, श्री कृष्ण वन में जाते हैं, वन से लौट कर आते हैं, लेकिन फिर भी हर बार जब इन विषयों के ऊपर चर्चा होती है तो कोई नई विशेष बात सुनने में आती है, समझने में आती है, और इससे कृष्ण भक्ति का और लीला श्रवण का रस बढ़ जाता है। और आचार्य जो हैं वो सारे रसवर्धक आचार्य हैं, रस को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये टीकाएं क्या है? टीका केवल रस बढ़ाने के एक माध्यम है। अपने हृदय से ही वो ऐसे साक्षात्कार भी प्रस्तुत करते हैं जिससे कि श्रोतागण, उनके हृदय में भक्ति की वृद्धि हो, विकास हो। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, शुकदेव गोस्वामी ने भी ऐसे ही रस का वर्धन किया और श्रीमद् भागवत की रचना की। हर पल पे जैसे जैसे श्रीमद् भागवत का कथन होता गया वैसे वैसे रस की वृद्धि होती गई। ये है गुरु शिष्य परंपरा, ये है आचार्यों की टीका। हर बार जब कोई आचार्य उसी लीला को समझाते थे तो कोई और एक नई बात, विशेष बात उसमें से एक टीका करते, साक्षात्कार करते। इतने महान आचार्य हुए हैं। जब से भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार श्रीमद् भागवत की कथा की थी ब्रह्मा जी को, चतुर्श्लोकी भागवत केवल सारांश में, उसके बाद में ब्रह्मा जी ने नारद देव को, नारद देव ने व्यास देव को, व्यास देव ने अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को, शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को, उधर सूत गोस्वामी भी वहां पर उपस्थित थे जब शुकदेव गोस्वामी प्रवचन कर रहे थे, तो सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में एकत्र हुए ऋषि मुनियों को। तो इस प्रकार से परंपरा बढ़ती गई और आगे चल के इतने महान टीकाकार हुए जैसे कि श्रीधर स्वामी, और उसके बाद में गौड़ी वैष्णव परंपरा में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, और उनके पहले छह गोस्वामी, खास करके सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी। इन दोनों आचार्यों ने श्रीमद् भागवत के ऊपर बहुत सुंदर टीकाएं लिखी हैं, दशम टिप्पणी इत्यादि। जीव गोस्वामी ने लिखे गोपाल चंपू, और भी कई ऐसे आचार्य हुए। हम कवि कर्णपुर के आनंद वृंदावन चंपू से भी पिछले कई दिनों से बोलते आ रहे हैं। तो ऐसे कितने वैष्णव आचार्य हुए हैं जिन्होंने उन्हीं लीलाओं को चबा चबा कर और मधुर और स्वादिष्ट किया है, जिस प्रकार से एक तोता एक फल को चख कर उसे और भी स्वादिष्ट बनाता है। तो इसलिए ये हम बार बार कथा सुनने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। कथा या प्रसंग ये चल रहा है पिछले कई दिनों से कि भगवान श्री कृष्ण अपनी गौचारण लीला आरंभ कर चुके हैं, गोपाष्टमी के उत्सव से आरंभ होकर भगवान श्री कृष्ण ने गौओं को चराना आरंभ किया। उसके पहले वे वत्स पालक थे, अब गौपालक हो गए। और ये वर्णन हम सुन चुके हैं कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण गौओं को लेकर जाते थे, वहां के पशु प्राणियों ने उनका स्वागत किया, उनकी सेवा की, क्या क्या लीलाएं, कौन सी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने अपने ग्वालबाल मित्रों के साथ में वन में किए। और कल हम यही चर्चा कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण की सांझी लीला, प्रतिवर्तन लीला। मतलब जब भगवान शाम के समय गायों को वन में चराने के बाद वृंदावन लौट कर आते हैं, ये लीला तो बहुत सुंदर है, वैष्णवों को बहुत प्रिय है, क्योंकि ब्रजवासी इस घटना के लिए या इस समय के लिए बहुत तीव्रता से, आतुरता से प्रतीक्षा करते थे, कब शाम आएगी और कब श्री कृष्ण लौट कर आएंगे। उस समय तो घड़ी नहीं हुआ करते थे, लेकिन हमेशा गोपियां ब्रजवासी सूरज की ओर देखती थी, अरे सूरज अपने चक्के पे, रथ पे इतने धीरे से क्यों चल रहे हैं, क्या रथ का चक्का टूट गया है क्या? सूर्यदेव अपने रथ पे सवार होकर चलते हैं आकाश में, उनका जो चक्र होता है संवत्सर, वो घूमता रहता है सूरज अपने रथ पे सवार होकर। और गोपियां सोच रही थी इतने धीरे 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 चल रहा है, सूर्यास्त क्यों नहीं होता जल्दी से, क्योंकि सूर्यास्त होगा तो श्री कृष्ण लौट कर जल्दी से आएंगे। लेकिन लगता है कि सूर्यदेव की गाड़ी के टायर पंक्चर हो गया है, वहीं पर रुक गए हैं, समय ही नहीं बीतता, समय जल्दी नहीं जा रहा है, बहुत लंबा लग रहा है। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा था, युगायतम नमेशेन चक्षुषा प्रावेशायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, कि भगवान श्री कृष्ण के गोविंद गोविंद के विरह में एक क्षण भी त्रुटि एक युग के समान प्रतीत होता है। तो हमेशा दिन भर गोपियां और ब्रजवासी प्रतीक्षा करते शाम कब आएगी, और कृष्ण भगवान बस उस प्रतिवर्तन लीला में आते थे, और जिस समय से वो प्रवेश करते वृंदावन में और उसके बाद में जब वो घर में प्रवेश करते, तब तक उतना ही दृश्य गोपियों को मिलता था, बस उतना ही पोषण उनके आत्मा को मिलता था, उनके नेत्रों को, और उस पोषण से वो रात भर जीवित रह सकते थे। अगर शाम को कृष्ण को नहीं देखते तो शायद जीवित नहीं रह पाते। फिर सुबह के समय फिर से वन में प्रस्थान करने की लीला, केवल अपने घर से जब तक कि वो दूर वन में जाते तब तक गोपियां देखती रहती, और वो उनके दिन भर के लिए पोषण। जैसे कि हम सुबह को नाश्ता लेते हैं, दोपहर के भोजन तक हमारे लिए पोषण होता है ताकि हम कार्य कर सकते हैं, शरीर में ताकत आती है, दोपहर का भोजन खाते हैं रात तक के लिए शक्ति मिलती है, रात को खाते हैं तो फिर रात भर के लिए शरीर थोड़ा हृष्ट पुष्ट रहता है। तो गोपियां शारीरिक पोषण के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करती थी, ज्यादातर आध्यात्मिक पोषण में उनको रुचि थी। और आध्यात्मिक पोषण क्या था? श्री कृष्ण का दर्शन, कृष्ण बांसुरी बजाते हुए, गवों को आगे रखते हुए, अपने ग्वाल बाल मित्रों से घिरे हुए चलते थे, और उनके मित्र हमेशा उनका गुणगान करते थे। बस ये दो टाइम का दर्शन होता था उनको, सुबह को और शाम को, बाकी समय तो कृष्ण भगवान वन में रहते थे। अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला आरंभ नहीं की थी, गोपियों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति तीव्र आसक्ति उत्पन्न हुई थी, लेकिन अभी तक कृष्ण से मिलन नहीं हुआ था। इसलिए भक्ति की भाषा में इसको पूर्व राग कहते हैं। पूर्व राग मतलब मिलन के पहले जो राग या जो आसक्ति हृदय में पैदा होती है वो भक्ति है, वो प्रेम। क्योंकि जिस प्रकार से श्री कृष्ण पौगंड अवस्था में प्राप्त में प्रवेश कर चुके थे, गोपियां भी करीब करीब उसी उम्र के उस समय थीं, एक साल आगे पीछे। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जब लौट के आते थे तो दिन भर की प्रतीक्षा और दिन भर की सारी जो भी कामनाएं थीं, विरह से उत्पन्न होने वाले ताप, तापम जहवह कल हम पढ़ रहे थे, विरह जम, विरह से उत्पन्न होने वाली ताप वो नष्ट हो जाता था केवल श्री कृष्ण के सुंदर मुखारविंद को देखकर। तो इस प्रकार से ये लीला बहुत प्रिय है वैष्णवों के लिए। और आगे जब कृष्ण भगवान वृंदावन में प्रवेश करते, गायों को अपने अपने गोष्ठों में, गौशालाओं में स्थान दे जाते, फिर अपने घर में लौट के आते, उधर माता यशोदा और रोहिणी देवी कृष्ण और बलराम की बहुत आतुरता से प्रतीक्षा करते, दिन भर ये चिंता करते कि आज हम कृष्ण को बलराम को क्या खिलाएंगे, कौन से कपड़े पहनाएंगे। और जब कृष्ण बलराम लौट कर आते, अच्छी तरह से उनको नहलाते, मालिश करते, उनके नहलाने मालिश इत्यादि की चर्चा हम कल कर चुके और कई सबक हमें मिल सकते हैं इनसे। हमें भी कैसे स्नान करना चाहिए, हमें भी कैसे खाना पीना चाहिए, ये साधारण से साधारण चीजों के बारे में भी उपदेश भगवान की लीला से हमें मिलते हैं। और फिर भगवान को माता यशोदा सुला देती थी एक श्रेष्ठ शैया के ऊपर। ये प्रतिदिवस की लीला थी। और इसके बाद शुकदेव गोस्वामी एक और सुंदर लीला का वर्णन करने जा रहे हैं जो कि प्रसिद्ध है, जिसको बच्चा बच्चा भी जानता है, और वो है कालिया दमन की लीला। अभी गोपाष्टमी कार्तिक महीने के शुक्लाष्टमी में हुआ, शुक्ल पक्ष के अष्टमी में, तो कार्तिक महीना करीब करीब अभी बहुत करीब है। और इसके बाद में कई महीने बीत गए और ऐसा ही कार्यक्रम चलता रहा जैसे कि शुकदेव गोस्वामी ने अब तक वर्णन किया है। तो गोपाष्टमी या कार्तिक महीने के बाद में अगले तुरंत बाद जो गर्मी का मौसम आया, उसका वर्णन अब शुकदेव गोस्वामी करेंगे, क्योंकि इस मौसम के दौरान कालिया दमन की लीला हुई। तो यहां पर शुकदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं ये हम सुनें। एवं स भगवान कृष्ण वृंदावनचर क्वचित ययौ रामं मृते राजन् कालिन्दीं सखिभिर्वृतः। शुकदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, हे राजा, इस प्रकार भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं करते हुए वृंदावन क्षेत्र में विचरण करते थे। एक बार वे अपने मित्रों समेत यमुना नदी के तट पर गए, तब बलराम उनके साथ नहीं थे। एवं इस तरह शब्द का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे वन में आया करते थे, जाया करते थे, प्रतिदिन की लीला चल रही थी। वास्तव में यह नित्य लीला है, केवल एक दो सालों की बात नहीं है। भगवान के धाम में यह गोचारण की लीला अभी भी चल रही है, पहले भी चल रही थी, शाश्वत लीला। भगवान कभी गायों को चरा के थकते नहीं है, उब नहीं जाते। यह भगवान श्री कृष्ण का प्रेम गौओं के प्रति। यह संसार में हम कोई एक काम बार बार दिन ब दिन वही करते करते हम उब जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण गौओं को चराते थे हर रोज, लेकिन फिर भी इन सारी लीलाओं में हर रोज कोई न कोई नई बात आती थी, नया नया रस आता था। नव नव रस धामन उद्यते रंतुमासीत। नवीन रसों का उत्पादन कृष्ण भक्ति में होता है, कृष्ण की लीलाओं में होता है। स भगवान कृष्णो वृंदावन चरह क्वचित। वृंदावन में चरते थे मतलब विचरण करते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का और एक नाम है ब्रज बिहारी। ब्रज बिहारी मतलब ब्रज में विहार करने वाले, या वृंदावन बिहारी, वृंदावन में जो विहार करते थे उनका नाम है वृंदावन चरह क्वचित। तो ऐसे भगवान घूमते फिरते थे वृंदावन में, नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। ययौ रामम ऋते राजन, हे राजन, हे राजा परीक्षित, एक दिन क्या हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण वन में गए तो रामम ऋते, बिना बलराम जी के। कभी कभी कृष्ण भगवान बलराम को साथ में लेकर जाते थे और कभी कभी बलराम जी नहीं आते थे। बलराम जी कई बार जब नहीं गए तो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, जैसे हम चर्चा कर चुके थे कि अगासुर का वध भी उस दिन हुआ जब बलराम जी का जन्मदिवस था। तो रोहिणी देवी ने बलराम जी को रोक कर रखा था, वहां स्नान करना था, आरती उतारनी थी, नाना प्रकार की और क्रियाएं थे, और बलराम के संरक्षण के लिए मंत्र तंत्र इत्यादि किए जा रहे थे, ब्राह्मणों को बुलाया था, बहुत अनुष्ठान थे, लेकिन बाकी ग्वाल बाल कृष्ण सहित वन में चले गए थे। और उसी दिन जिस दिन अघासुर का वध हुआ, ब्रह्मा जी ने वत्सों को और ग्वाल बालों की चोरी की थी। और ठीक एक साल बाद ब्रह्मा जी विमोहित हुए थे और उस दिन भी बलराम जी का जन्मदिवस था, इसलिए उस दिन भी ब्रह्मा जी नहीं आए। तो बलराम जी जो हैं, वो उनकी अनुपस्थिति में कई ऐसे महत्वपूर्ण लीलाएं हुई। और ये भी कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण की योजना के अनुसार ही चलता था, क्योंकि बलराम जी अगर उस समय होते तो शायद ब्रह्मा जी ऐसे नहीं कर पाते। तो भगवान की ऐसी लीला हुई कि बलराम जी को जानबूझकर पीछे वो रह गए, रहना पड़ा। उसी प्रकार से ब्रह्म विमोहन लीला के समय भी ब्रह्मा जी बलराम जी पीछे रह गए थे। तो इस दिन जब बलराम जी पीछे रह गए, इसका मतलब है कि इसका कोई कारण था। तो क्या कारण था? अभी श्री कृष्ण कालिया दमन लीला करना चाहते थे। ठीक है, कालिया दमन लीला करना चाहते थे तो बलराम को साथ में क्यों नहीं ले गए? क्योंकि कृष्ण भगवान सोच रहे थे कि जब मैं कालिया के फणों में हूंगा तो ब्रजवासी मुझे देखेंगे तट पे खड़े होकर, इतने दुखी हो जाएंगे कि अपना प्राण त्याग देंगे, बल्कि प्राण नहीं, वो तो नदी में ही कूद जाएंगे, और नदी का जल तो बहुत जहरीला होगा, सब मर जाएंगे। तो बलराम जी अगर उनके साथ में तट पे रहेंगे तो वो उनको रोक पाएंगे, क्योंकि बलराम जी उन सब के साथ में आएंगे। जब खबर पहुंच जाएगी, त्राही त्राही मच जाएगा सारे ब्रज में कि कृष्ण को कालिया ने पकड़ लिया है, तब तो सारे ब्रजवासी आ जाएंगे। तो बलराम को उनको रोकने के लिए आवश्यकता है। और दूसरी बात, कृष्ण सोच रहे थे कि हालांकि बलराम मेरे बड़े भाई हैं, वो भी मेरे विस्तारित रूप है, वही भगवान है, लेकिन वो मुझसे इतना स्नेह करते हैं, मुझे छोटा भाई समझते हैं, जब मैं कदम वृक्ष के ऊपर चढ़ूंगा नदी में कूदने के लिए, तो शायद स्नेह के मारे वो मुझे रोक दे, और अगर मुझे वो रोक दे तो मैं कालिया को दमन कैसे करूंगा, नहीं हो पाएगा, और वो मेरे बड़े भाई हैं तो मुझे उनकी बात सुननी पड़ेगी, आखिर पिछले जन्म में मैंने उनकी बात नहीं सुनी थी, इसलिए तो इस जन्म में बड़े भाई होकर आए हैं, तो इस बार तो मुझे सुनना ही पड़ेगा। और अगर मैं कूदने के लिए तैयार हुआ और उन्होंने मुझे रोक दिया तो फिर सारा मामला चौपट हो जाएगा, फिर हम ये लीला नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा यही है कि बलराम जी घर में ही रह जाए। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कालिया दमन लीला करने की तैयारी की। कालिंदी सखी भी वृतः, कालिंदी अर्थात यमुना देवी के तट पर अपने गोपगण, गोपों के संग में वहां पर गए। कौन सा दिन था, दिन का वर्णन अब सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु।
अथ गावश्च गोपश्च निदागातप पीड़िताः दुष्टं जलं पपुस्तस्य तृष्णार्थ विषदूषितम्।
अथ उसके बाद गावश्च गोपश्च, गवों को लेकर, गोपों को लेकर, निदाघ आतप पीड़िताः। निदाघ मतलब ग्रीष्म ऋतु, बहुत ही ज्यादा गर्मी, और आतप मतलब बहुत तेज सूरज की किरणें, मानो की अग्नि के बराबर। जैसे गर्मी के समय में 12 बजे या 2 बजे दोपहर को कितनी गर्मी होती है, कड़क धूप, उसको आतप कहते हैं। तो इतनी गर्मी से सब पीड़ित हो गए, पीड़िताः। अब प्रश्न ये आ सकता है कि वृंदावन में इतनी कड़क धूप, हाँ आजकल तो वृंदावन में हम देखते हैं कि ठंडी के समय बहुत ठंडी, गर्मी के समय बहुत गर्मी होती है, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे ब्रज में 5000 वर्ष पूर्व, वहां साल भर जो है वो वसंत ऋतु के समान हुआ करता था। इसलिए कृष्ण भगवान को माधव भी कहते हैं। ये एक कारण है कृष्ण भगवान को माधव कहने के लिए, क्योंकि जब भी भगवान श्री कृष्ण वृंदावन या वन में प्रवेश करते थे तो माधव ऋतु हो जाती थी। माधव मतलब वसंत ऋतु, वसंत ऋतु में सारे फूल कली वगैरह खिलने लगते हैं। तो उस समय जब वृंदावन में कृष्ण जाते थे गर्मी के समय भी, तो वसंत ऋतु खिल उठता था, इसलिए भगवान का नाम है माधव। आप में से किसी को याद है माधव के और क्या अर्थ हैं? दो दिन पहले चर्चा हुई थी, दो तीन दिन पहले। लक्ष्मी जी के पति, मां मतलब लक्ष्मी, धव मतलब पति, माधव लक्ष्मी पति। दूसरा अर्थ हुआ वसंत ऋतु, जो वसंत ऋतु को उत्पन्न करते हैं। और क्या अर्थ है? मधुवंश, मधुवंश में आने वाले, जिस प्रकार से रघुवंश में आने वाले राघव हुए प्रभु रामचंद्र, उसी प्रकार मधु के वंश में आने वाले हुए माधव। लेकिन मधु तो एक असुर थे, तो उनको नाम हुआ मधुसूदन। लेकिन ये मधु दूसरे मधु हैं, दो मधु हैं। एक मधु असुर थे जिनका वध करके कृष्ण का नाम हुआ मधुसूदन, और दूसरे मधु वो एक राजा थे जो कि राजा वृष्णि के पिता थे। कृष्ण तो वृष्णि वंश में आए ना, तो वृष्णि वंश पड़ा राजा वृष्णि के बाद में, नवम स्कंद में इसका वर्णन आता है। और वृष्णि राजा के पिता का नाम था मधु, तो मधु के वंश में आने वाले माधव। तो ये हैं सारे अर्थ माधव शब्द के। इस प्रकार से ये प्रश्न अब आ सकता है कि जब वृंदावन में जब श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं, अगर हर समय वसंत ऋतु होती है, तो यहां पर निदाघ आतप पीड़िता ये अवस्था कैसे आ सकती है कि गर्मी के मारे सब लोग बाल बाल गाय पीड़ित थे? तो इसका जवाब यह है कि कृष्ण भगवान कालिया दमन लीला करना चाहते थे, तो ये खास भगवान की योजना थी। भगवान ने अवस्था वृंदावन में जानबूझकर ऐसे की ताकि ग्वाल बाल गाय इतने प्यासे हो जाएंगे कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और यमुना का जल जाकर पिएंगे। यमुना का जल नहीं, ठीक वैसे यमुना के पास में जहां कालिया रहता था, कालिया का हृदय, हृदय मतलब जो कुंड या तालाब था, वहां जाकर उनको पीना था। वैसे साधारण अवस्था में कभी उस जगह नहीं जाते, लेकिन जब आदमी को बहुत प्यास लग जाती है, भूख लग जाती है, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, पानी पानी कहता है, कहीं से भी पानी पीने के लिए तैयार हो जाता है। भूख लग जाती है तो उपवास है, नहीं है, कुछ नहीं देखते, हम खा लेते हैं। तो भूख प्यास से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो जानबूझकर भगवान श्री कृष्ण ने इतनी गर्मी लाई वृंदावन में कि बहुत प्यास लग गई सबको। और उसके बाद में यहां सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, दुष्टम जलन पपुस्तस्या, जल दूषित हो गया, प्रदूषण आ गया, तृष्ण आर्त विष दुषाम, और प्यास के मारे ये सारे ग्वाल बाल इधर उधर जा रहे थे, कहां पानी मिलेगा, कहां पानी मिलेगा। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, विषाम्भस्तद उपस्पृश्य दैवोपहत चेतसः निपेतुर्व्यसवः सर्वे सलीलान्ते कुरुत्वः। विष अम्भः, अम्भ मतलब जल, विष मतलब जहर। तो ऐसे जहरीले जल में उपस्पृश्य जब स्पर्श किया ग्वाल बालों ने, तो क्या हुआ? दैव उपहत चेतस, उपहत चेतस, वो बेहोश होकर गिर पड़े। लेकिन ये दैव से हुआ, दैव साधारण भाषा में हमारा प्रारब्ध है, दुर्दैव से ऐसे हुआ, सुदैव से ऐसे हुआ, दैव मतलब अपनी किस्मत, अपना नसीब, साधारण भाषा में। लेकिन यहां पर दैव का मतलब है कि विशेष कृष्ण की योजना। कृष्ण ने जानबूझकर ये लीला ऐसे की, सारे परिस्थिति का निर्माण ऐसे किया कि जाकर ग्वाल बाल और गाय वहां पानी पीने वाले हैं, जो प्रदूषित जल था। और वहां जाकर वो जब पीने लगे तो क्या हुआ? निपेतु व्यसवः सर्वे, तो तुरंत सब गिर पड़े, व्यसवह, मानो कि वो मर ही गए, गिर पड़े सीधे दंडवत जैसे निपेतु, और गिरकर सब बेहोश हो गए। यह शब्द है सर्वे, एक साथ सभी गिर पड़े। इसका मतलब है कि सभी ग्वाल बाल और सभी गाय एक साथ पानी पी रहे थे। वैसे कभी कभी क्या होता है, जब हम पानी पीने जाते हैं, अगर 10 लोग जा रहे हैं, 2-3 नल होते हैं, तो 2 लोग पहले पीते हैं, फिर उसके बाद 2 आते हैं, 2-4 आते हैं, ऐसे धीरे धीरे जाते हैं। और अगर पानी गंदा है तो पहले वाले बोलते हैं, अरे पानी गंदा है, पियो मत, तो बाकी लोग सावधान रह जाते हैं। अगर ऐसे हुआ होता यहां पर, अगर 2-4 ग्वाल बाल पहले जाते, गाय पहले जाते और वो गिर पड़ते, तो सारे दूसरे जो ग्वाल बाल है सतर्क हो जाते, वो नहीं पीते। लेकिन सब यहां एक साथ में गिर पड़े, इसका मतलब है कि सभी लोग एक साथ में पानी पीने लगे। अभी हजारों गाय थे, हजारों ग्वाल बाल थे, लेकिन कृष्ण की लीला में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये सारे वहां पर आए, एक साथ जल का पान करने लगे, और जैसे ही जल का पान किया, तुरंत सब गिर पड़े। सलीलांते, सलील मतलब कुंड या नदी, वहां पर गिर पड़े। तो परीक्षित महाराज को यहां कुरु उद्वह कहते हैं, हे कुरुवंश में आने वाले। तो इस शब्द का प्रयोग करके सुखदेव गोस्वामी उनको याद दिलाना चाहते हैं कि हे कुरुवंशी, इस ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये बच्चे ऐसे जहरीले जगह में जाकर पानी पिए और वहां गिर पड़े, क्योंकि आपको पता है अच्छी तरह से, जब व्यक्ति को प्यास लगती है तो कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। याद था ना परीक्षित महाराज को, क्या किया था परीक्षित महाराज ने प्यास के मारे? वो जब वन में गए थे शिकार के लिए, इतने प्यासे हो गए कि घूमते घूमते पानी पानी करते करते आए शमिक ऋषि के आश्रम में, और उन्होंने देखा कि वहां शमिक ऋषि ध्यान में बैठे हुए हैं। परीक्षित महाराज तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जब वो मां के गर्भ में थे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया था, भगवान श्री कृष्ण ने उनकी ब्रह्मास्त्र से रक्षा की थी, और इसलिए उनका नाम हुआ परीक्षित, क्योंकि उन्होंने भगवान को देखा, और जब जन्म लिया तो उनकी परीक्षा लेने के लिए इधर उधर ध्यान रहते, कहां है वो व्यक्ति जिनका दर्शन हमने गर्भ में किया था, इससे उनका नाम हो गया परीक्षित। तो ऐसे भगवान श्री परीक्षित भले एक संत का अपमान कैसे करते, केवल प्यास के मारे। जो व्यक्ति पूरी तरह से आध्यात्मिक स्तर में स्थित हैं, वो जाकर ऐसे कोई अपराध करते बड़े संत के प्रति, ये भी भगवान की योजना थी। लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज ने ऐसे किया तो सही, एक मरे हुए सांप को उठाया अपने बाण से, अपने धनुष से, और ऋषि के गले में डाल दिया और चले गए। परीक्षित महाराज को क्रोध आया था, उन्हें लगा कि ये ढोंग कर रहे हैं ध्यान करने का, वास्तव में ये सोच रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूं और ये राजा तो क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, मैं क्यों इनको सम्मान करूं। तो परीक्षित महाराज ने सोचा कि शायद मुनि के मन में ऐसे विचार आया होगा, इसलिए जानबूझकर आंखें बंद किए हैं, ध्यान करने का नकल वो ढोंग कर रहे हैं, तो मैं भी उनको सिखाता हूं। तो मरा हुआ सांप लेकर वहां डाल दिया। लेकिन श्रमिक ऋषि का 12 वर्ष का पुत्र श्रृंगी नदी के तट पर अपने मित्रों के साथ में खेल रहा था। ब्रह्म तेज की वजह से उस पुत्र को पता चला कि क्या हो चुका है, मेरे पिता का अपमान हुआ है। तो उसने जल का स्पर्श किया, आचमन किया, और फिर एक शाप दिया राजा परीक्षित को कि आप 7 दिन में मर जाएंगे। सारे पृथ्वी को राजा, पृथ्वी के राजा को शाप देने की क्षमता एक 12 वर्ष के ब्राह्मण के पुत्र के अंदर थी। उस काल के ब्राह्मणों की शक्ति वो थी, लेकिन आजकल ऐसा संभव नहीं है। तो खैर, यह भी भगवान की योजना थी, क्योंकि भगवान सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से भागवत की कथा कराना चाहते थे और परीक्षित महाराज को प्रमुख श्रोता बनाना चाहते थे। परीक्षित महाराज इतने महान भक्त थे, इसलिए भगवान श्रीमद् भागवत के प्रमुख श्रोता का श्रेय का सुअवसर परीक्षित महाराज को देना चाहते थे। लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी अब परीक्षित महाराज को हल्के तरह से याद दिला रहे हैं, कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित होकर व्यक्ति क्या नहीं करता, उसकी बुद्धि तो पूरी भ्रष्ट हो जाती है, विवेक बुद्धि खो देता है आदमी। और इस प्रकार से सारे बच्चे वहां पर गिर पड़े।
वीक्षितान् वै तथा भूतान् कृष्णो योगेश्वरेश्वरः ईक्षामृतवर्षिण्य स्वनाथान समजीवयत।
वीक्ष्य भगवान ने देखा, तान तथा भूतान उन सबको देखा जो कि वहां पर नीचे ऐसी अवस्था में पड़े हुए थे। तो भगवान श्री कृष्ण जानबूझकर पीछे पीछे आ रहे थे, सबके सामने नहीं आए। अगर सबके सामने आए होते तो उनको भी पहले जल का पान करना होता, वो तो पीछे पीछे आए। पीछे आकर उन्होंने देखा कि अवस्था हुई, सारे ग्वाल बाल नीचे गिर पड़े हैं, प्राय उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो भगवान ने क्या किया, ईक्ष्य देखा अमृत वर्षण्य, अमृत की वर्षा की। लेकिन अमृत की वर्षा कैसे, ईक्ष्य केवल अपने दृष्टि से, अपने नजर से। कवि कर्णपुर बताते हैं कि मानो उनकी दृष्टि से अमृत की धारा बह रही थी, अमृत की बूंदे टप 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 करके गिर रही थी। भगवान केवल अपने दृष्टि मात्र से वर्षा अमृत का कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और बहुत सुंदर लग रहे थे, बड़े प्रेम से भगवान ने अपने ग्वाल बाल मित्रों की ओर ये नजर रखी। और जैसे ही दृष्टि उन्होंने लगाई ग्वाल बाल मित्रों के ऊपर, सारे जो ग्वाल बाल पुनः जीवित हो गए और समजीवयत उनको फिर से जीवित कर दिया। और उस समय जब वो सारे आए तो सब एक दूसरे को देखने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण आखिर भगवान है, उनके लिए लोगों को जीवित करना कोई कठिन बात नहीं है। यहां पर अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है, मृत्युशैया पर लेटा हुआ होता है अंतिम क्षणों में, और किसी डॉक्टर ने उसे उसकी मृत्यु टाल दी थोड़े दिनों के लिए, तो लोग उसको भगवान मानते हैं, उसके पैर छूते हैं। मुझे याद है कई साल पहले एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनको लोग प्राय भगवान के स्तर पर ही मानते हैं, सिनेमा के अभिनेता हैं। तो हमें कोई भक्त बता रहे हैं जो कि डॉक्टर है, वो कह रहे थे कि उनको एक ऐसे अपघात हुआ, एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उनके प्राण खतरे में आया। और एक डॉक्टर थे जिन्होंने उनके ऊपर ऑपरेशन किया, उनकी जान बचाई। तो ये अभिनेता ने उनके पैर छुआ, उनको भगवान कह के संबोधित किया कि आपने हमारी जान बचाई। और इस तरह से इतना जो पूजनीय है व्यक्ति सारे समाज के लिए, वो सोचता है कि एक डॉक्टर ने मुझे बचा दिया। तो जब जीवित व्यक्ति को एक थोड़ा बहुत डॉक्टर बचा लेता है ऑपरेशन करके, तो लोग इतनी प्रशंसा करते हैं, उसको भगवान मानते हैं। लेकिन क्या डॉक्टर किसी मृत व्यक्ति को पुनः जीवित कर सकता है, ये संभव नहीं है। आज तक ऐसा कोई डॉक्टर हुआ है, नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण ने केवल एक ग्वाल बाल या एक गाय को नहीं, हजारों ग्वाल बालों को और हजारों गौओं को एक साथ में जीवित कर दिया। और ये जो डॉक्टर ने उस अभिनेता को फिर से होश में लाए, नाना प्रकार के औषधियां औजार इस्तेमाल करके, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कौन से औजार की इस्तेमाल किया, कोई नहीं, केवल अपने दृष्टि मात्र से। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को यहां शुकदेव गोस्वामी योगेश्वरेश्वर कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण केवल योगी नहीं है। कई बार लोगों की गलत धारणा होती है कृष्ण के बारे में कि कृष्ण तो केवल एक ग्वाल बाल है, कृष्ण केवल योगी है, वो पॉलिटिशियन है, वो ऐसे है वैसे है, लेकिन योगी नहीं, वो योगेश्वर है। योगेश्वर यत्र यत्र पार्थ धनुर्धर यत्र योगेश्वर है कृष्ण। तो योगेश्वर ही नहीं, वो योगेश्वरेश्वर है, योगेश्वरों के ईश्वर है, ये है कृष्ण। तो उनके लिए कौन सी योग की विद्या असंभव है, कौन से योग का ज्ञान, कौन सा जो चमत्कार है जो उनके लिए असंभव है। तो केवल दर्शन मात्र से सारे जो बच्चे हैं
पुनः जीवित हो गए। तो यह है भगवान के ऐश्वर्य का प्रदर्शन, उनकी शक्ति का प्रदर्शन।
ते संप्रति तस्मर्तय समुत्थाय जलांतिकात आसन सुविस्मिता सर्वे वीक्षमाणः परस्परम्। ते संप्रतीत स्मृतयः,
और फिर स्मृतयः उनकी स्मृति संप्रतीत आय, उनको पुनः जागृत हो गई, उनको याद आया कि हम मर चुके थे। वैसे देखा जाए तो ग्वाल बाल कैसे मर सकते हैं? क्यों नहीं मर सकते ग्वाल बाल? क्योंकि वो कृष्ण के सखा हैं, कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, तो उनका शरीर भौतिक शरीर नहीं है, उनका दिव्य शरीर है। लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा था कि मानो वो मर चुके हैं। ग्वाल बालों का शरीर हमारे जैसे साधारण भौतिक शरीर नहीं था, आध्यात्मिक शरीर था, लेकिन फिर भी उनको लगा कि हम तो मर चुके थे। समुत्थाय जलांतिकत, जल के तट पे जो सोए हुए थे, उत्थाय उठ गए, और फिर क्या किया? आसान सुविस्मिता सर्वे, और फिर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। क्यों आश्चर्यचकित हो गए? क्योंकि सबकी स्मृति वापस आ गई, उनको मालूम था कि हम मर चुके थे, और मरकर हम जीवित हो गए तो आश्चर्यचकित हो गए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो आश्चर्यचकित हो गए, अरे हम मर गए फिर से जीवित हो गए। और फिर वीक्षमाण परस्परम, आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे, एक दूसरे, अरे मैं तो मर गया था, मैं जीवित हो गया, तुम भी मर गए थे, तुम भी जीवित हो गए, और एक दूसरे को ऐसे सब लोग देख रहे हैं, अरे हम सब मर गए थे, हम सब कैसे जीवित हो गए? तो एक दूसरे परस्पर वीक्षमाण परस्परम, और इस प्रकार से सब एक दूसरे को देख रहे थे कि कैसे जीवित हुए। फिर सबकी दृष्टि गई कृष्ण के ऊपर, कृष्ण वहां अपने हल्की मुस्कान से खड़े थे। कृष्ण सब कुछ जानते हैं, कृष्ण की मुस्कान को सब देखा, सब ग्वाल बालों को एहसास उसी क्षण हुआ कि हाँ कृष्ण ने ही हमें बचाया, आखिर हमें और कौन बचा सकता है। और इस प्रकार से ग्वाल बाल मित्रों ने बड़े प्रेम के नेत्रों से कृष्ण की ओर देखा, और एक फिर उन्होंने क्या सोचा अपने मन में?
अन्वमन सततद्राजन गोविंदानुग्रहेक्षितम् पीत्वा विषम परेतस्य पुनरुत्थानम् आत्मनः। अन्वमन सततद्राजन,
उसके बाद उन्होंने सोचा, क्या सोचा? गोविंद अनुग्रह ईक्षितम्, गोविंद के अनुग्रह ईक्षितम्, केवल भगवान के कृपा दृष्टि से अनुग्रह ईक्षितम् से क्या हुआ है? पीत्वा विषम परे तस्य पुनरुत्थानम आत्मनः, हमने हालांकि ये विष पीत्वा विषम, हमने विष का पान किया था, लेकिन फिर भी परे तस्य हमारा जान भी चला गया था, लेकिन पुनरुत्थानम हम उठ गए हैं। क्यों? केवल कृष्ण की कृपा दृष्टि से। तो कृष्ण ही ने हमें बचाया है, इसका एहसास ग्वाल बालों को हुआ, और फिर एक दूसरे की ओर देखकर परस्पर बोलने लगे कि देखो कृष्ण कितने सुंदर है, कृष्ण के कार्य कितने अद्भुत हैं, कृष्ण ने हमें आज भी मृत्यु से पुनः जीवित किया, ठीक उसी तरह से कि जैसे जब हम अघासुर के मुख में थे। तुम्हें याद है एक साल पहले हम अघासुर के मुंह में थे, हम सब प्रवेश कर चुके थे। जब अघासुर के मुख में प्रवेश किए थे तो शायद उनको मालूम था, संशय था कि ये कोई भीषण एक असुर है जिसने एक सांप का रूप धारण किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कृष्ण है ना हमारे साथ में, तो क्या परवाह है, तो कृष्ण के भरोसे चले गए अंदर, और कृष्ण ने उनको बचा दिया। तो उस घटना की याद कर रहे हैं वो, और सोचते हैं कि जिस तरह से कृष्ण ने हमें अघासुर के मुख से बचाया, ठीक उसी तरह से आज भी कृष्ण ने हमें बचाया, मानो कि उसने हमें कृपा से अपने दृष्टि से संजीवनी रस पिला दिया है, और हम पुरुष फिर से जागृत हो गए हैं। और फिर ऐसा कहकर उनका हृदय प्रेम से भराया और कृष्ण की ओर सभी बड़े प्रेममयी आंखों से देखने लगे। तो ऐसे चमत्कार भगवान श्री कृष्ण ने किया है। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में निंदा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। हमेशा लोग यही पूछते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को झूठ बोलने के लिए क्यों कहा, उन्होंने जयद्रथ का वध किया तो धोखेबाजी से किया, भीष्म का वध, भीष्म की हत्या, द्रोणाचार्य की हत्या, सब अधर्म के सिद्धांत के अनुसार हुआ, उन्होंने गोपियों का वस्त्र हरण किया, ये सब चीजें भगवान ने क्यों की। लेकिन ऐसे लोग ये प्रश्न कभी नहीं करते कि भगवान श्री कृष्ण ने हजारों ग्वाल बालों को, हजारों गवों को अपनी दृष्टि मात्र से पुनर्जीवित कैसे किया। भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़े पर्वत को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली में 7 दिन 7 रात लगातार धारण कैसे किया। भगवान श्री कृष्ण ने 2 बार दावानल को जंगल की अग्नि का पान कैसे किया, बड़े बड़े असुरों का वध कैसे किया, जैसे कि अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, केशी, ये प्रश्न नहीं पूछते लोग, केवल ऐसे लोग पूछते हैं प्रश्न। क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो कृष्ण को नहीं जानते हैं। कृष्ण कौन है, भगवान शब्द का अर्थ क्या है, ये नहीं जानते हैं। भगवान को साधारण व्यक्ति समझते हैं, इसलिए इस तरह से भ्रमित हो जाते हैं। तो यहां भी भगवान ने ऐसे ही चमत्कार को प्रस्तुत किया था। इसलिए हमेशा ऐसे घटनाएं भी हमें याद रखने चाहिए, और जब लोग हमारे पास आएंगे और वाद करना शुरू करेंगे, तर्क करेंगे कि कृष्ण ने ऐसे किया वैसे किया, तो हमें उल्टा ये प्रश्न करना चाहिए कि आप ये प्रश्न क्यों नहीं करते हो कि भगवान ने ऐसे इतने लोगों को कैसे जीवित किया। फिर हम काम की बात करेंगे कि ऐसे जीवित कैसे किया, क्योंकि वो भगवान है, योगेश्वरेश्वर है। यहां के छोटे मोटे योगी नहीं है, योगेश्वर भी नहीं, योगेश्वरेश्वर है। इसलिए उनके ये सब करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों को समझा सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, ये आचार्यों ने जैसे जैसे हमें समझाया है वैसे हमें समझना चाहिए और दूसरों को समझाने का प्रयास करना चाहिए। और आगे फिर भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे, ये तो नदी बड़ी दूषित है, अब क्या किया जाए। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, श्री शुक उवाच, विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णः कृष्णा हि न विभुः तस्य विशुद्धिम् अन्विच्छन् सर्पं तम् उदवासयत्। बाद सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि काले सर्प कालिया ने यमुना नदी को दूषित कर रखा है, उसे शुद्ध करने की इच्छा की और इस तरह उन्होंने कालिया को उसमें से निकाल भगाया। कालिया दमन लीला एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया, समाप्त कर दी एक श्लोक में सारी लीला। लेकिन परीक्षित महाराज तो संतुष्ट नहीं है इससे, इसलिए वो आगे प्रश्न करने वाले हैं। लेकिन यहां पर 3 कृष्णों का वर्णन है। सबसे पहले है कृष्णा, कृष्णा, कृष्ण मतलब जो सांवले हैं या काला है। कृष्णा द्रौपदी का नाम भी है और जमुना जी का नाम भी है। जमुना जी का पानी भी थोड़ा काला काला है, इसलिए जमुना जी को भी कभी कभी कृष्णा कहते हैं। तो यहां पर विलोक्य दूषिताम कृष्णाम, विलोक्य देखा, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि कृष्णा का जल प्रदूषित हो गया है, तो भगवान श्री कृष्ण भी कृष्ण हैं, काले हैं, और यमुना जी भी काली हैं, तो थोड़ा ज्यादा प्रेम और था, इसलिए कृष्ण भगवान को यमुना जी ज्यादा प्रिय हैं। यमुना देवी को पिछले श्लोकों में कालिंदी भी बताया गया है, कलिंद की पुत्री, कली के प्रभाव को दुष्ट को खत्म करने वाले कलिंद की पुत्री कालिंदी। कालिंदी वैसे भगवान श्री कृष्ण की पटरानी थी, कौन से नंबर की? कृष्ण भगवान की पहली रानी कौन थी? रुक्मिणी। दूसरी क्रम से जिनसे विवाह किया इनके पहले जाम्बवती पहले आई, क्योंकि जाम्बवान ने अपनी पुत्री पहले उनको दी, फिर सत्रजीत ने अपने पुत्री सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण को दी। तो जाम्बवती दो नंबर पे, सत्यभामा तीन, और चौथे कालिंदी। तो जब अर्जुन और कृष्ण इंद्रप्रस्थ में यमुना के तट पर भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत सुंदर स्त्री को देखा, नवयुवती, और कृष्ण ने अर्जुन से कहा जाकर तो फिर कालिंदी, वो कालिंदी थी वास्तव में भगवान सूर्यदेव की पुत्री। तो अर्जुन ने जाकर पूछा कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, यहां किस लिए आए हैं? तो उन्होंने कहा मैं कालिंदी हूं, सूर्यदेव की पुत्री, और मेरे पिता सूर्यदेव ने यमुना के जल के भीतर मेरे लिए एक भवन बनाया है, और मैं यहां तपस्या कर रही हूं भगवान विष्णु या अच्युत या माधव को मेरा पति बनाने के लिए, ये मेरा व्रत है। श्री कृष्ण तो जानते थे, फिर आगे चल के श्री कृष्ण कालिंदी को द्वारका ले गए, पहले तो इंद्रप्रस्थ ले गए, वहां विवाह हुआ और उसके बाद में द्वारका ले गए। तो ये कालिंदी भी भगवान श्री कृष्ण की चौथी पत्नी हुई। आपको पता है कि जैसे कि हम बलराम जयंती पर चर्चा कर रहे थे, बलराम जी ने यमुना आकर्षण लीला की, यमुना जी के प्रति क्रोधित हो गए और अपने हल के अग्रभाग से यमुना जी को छोटे छोटे नदियों में विभाजित कर दिया, क्योंकि यमुना जी उनके पास नहीं आए थे पहले जब बलराम जी ने उनको बुलाया था, जबकि वो जल क्रीड़ा करना चाहते थे। तो उस समय मूर्तिमान यमुना देवी कालिंदी देवी उनके सामने आई थी। तो आचार्य समझाते हैं कि ये कालिंदी देवी जो कि यमुना देवी है, वो भगवान श्री कृष्ण की रानी कालिंदी नहीं, उनके विस्तृत रूप है। भगवान श्री कृष्ण की रानी कालिंदी तो हमेशा द्वारका लीला में रहती हैं, उनके विस्तृत रूप कालिंदी ये यहां ब्रज लीला में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। और ये जो कालिंदी देवी है यमुना देवी, वो सागर की पत्नी है। तो कालिंदी सूर्यदेव की कन्या है, यमराज के भाई, यम और यमी, यमुना और यमराज दोनों सूर्यदेव के बच्चे हैं। श्रीमद् भागवत में जहां सारे वंशावली बताई गई है उसमें ये सारी बातें हैं, कौन कितने बच्चे किसके हुए, कहां से कैसे वंश चलते आया, तो यहां से पता चलता है कि सूर्यदेव के ये दो बच्चे हुए, यमराज यम और यमी, तो यमुना देवी भी यमी है। तो इस प्रकार से यमुना देवी बहुत भाग्यशाली है। गंगा और यमुना दोनों पवित्र नदियां माने जाते हैं, अमर्त्या, अमर्त्या मतलब दिव्य, जो अमृत अवस्था को प्रदान कर सकती हैं। गंगा जी के बारे में तो सभी जानते हैं, गंगा जी को पाप नष्ट करने की शक्ति, पावन करने की शक्ति प्रसिद्ध है, क्योंकि भगवान श्री वामन देव के चरणों का स्पर्श होने की वजह से गंगा देवी शरणामृत हो गया, और गंगा में स्नान करने से हम मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यमुना जी का जल और भी ज्यादा शक्तिशाली है। जब गंगा जी का जल 100 बार 100 गुने है और शुद्ध किया जाता है तो उसको यमुना कहते हैं, ऐसे वराह पुराण में है। वराह पुराण का श्लोक है, गंगा शत गुण प्रायो मथुरे मम मंडले
यमुना विश्रुत देवी नात्र कार्य विचारणा।
गंगा शतगुण प्रायो मथुरे मम मंडले। हे देवी, मेरे मथुरा मंडल में जो यमुना जी हैं, वो गंगा से शतगुण प्राय ज्यादा शुद्ध है, शक्तिशाली है। और नात्र कार्य विचारणा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है या कोई तर्क वितर्क की बात नहीं है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि इसमें कोई वाद विवाद की बात नहीं है। निश्चित रूप से जान लो कि यमुना जी में जो शुद्धिकरण की या आध्यात्मिक बल है वो गंगा जी से 100 गुना ज्यादा है। गंगा जी से भी भाग्यशाली यमुना देवी है, क्योंकि यमुना देवी के जल में भगवान श्री कृष्ण ने पहले से ही सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं। भगवान के चरण कमल की धूली यमुना जी को सुशोभित पहले से कर रही हैं, जब से कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। आपको याद होगा कि जब वसुदेव भगवान श्री कृष्ण को कंस के कारागर मथुरा में वहां से लेकर एक टोकरी में अपने सर पे लेकर वो गोकुल जा रहे थे, तो उनको यमुना पार करना था। यमुना बाढ़ में थी उस समय, मूसलधार वर्षा हो रही थी, लेकिन श्री वासुदेव ने चर्चा परवाह नहीं की और जैसे ही वो अंदर गए तो यमुना जी की ने अपने जल को हटा दिया और वसुदेव के लिए एक पथ बनाया। और वसुदेव कृष्ण को ऊपर लेकर चल रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शरारतें तब से ही शुरू की। ऐसे नहीं कि अपने नटखट जो अवस्था है बाद में आगे चल के माखन चोरी से शुरू की, तभी से शुरू की। उन्होंने देखा कि मुझे थोड़ी मस्ती करनी है, तो क्या क्या टोकरी से गिर गए। वैसे तो टोकरी में से गिरने की कोई संभावना नहीं थी, वसुदेव ने अच्छी तरह से पकड़ा हुआ था और वैसे काफी नीचे थे कृष्ण वहां पर। साधारण बच्चा होता तो गिरने की संभावना नहीं थी, लेकिन कृष्ण के लिए कौन सी टोकरी पार करना असंभव है। तो कृष्ण भगवान गिर पड़े जानबूझकर यमुना जी में। इसके लिए दो कारण बताए जाते हैं। एक कि वसुदेव के प्रेम को और भी गाढ़ा और तीव्र बनाना चाहते थे, क्योंकि जब वसुदेव ने देखा अरे बच्चा गिर गया, कृष्ण गिर गया, तो स्वाभाविक है कितने प्राय दुख से चिंता से प्राय पागल हो गए और ढूंढते कृष्ण का, पानी में गिर पड़े, दिखाई नहीं पड़े चंद क्षणों के लिए। वासुदेव तो ऐसे लगे जैसे पागल व्यक्ति ढूंढ रहे जल में इधर उधर, कहां गया कृष्ण। और उस क्षण में जो पीड़ा हुई वसुदेव को, उस पीड़ा से उनकी प्रेम शत शत गुना, 100 गुना, हजारों गुना बढ़ गया, क्योंकि ऐसे चिंता करने से भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ जाता है। तो ये जो पीड़ा चिंता होती है वो एक अग्नि होती है, जिसमें हमारे जो भी कलमश होते हैं कण मात्र भी ऐसे शुद्ध भक्तों में रह भी जाते हैं तो उनको पूरी तरह से नष्ट कर देता है। तो भगवान चाहते थे कि वसुदेव की जो प्रेम है उसको और भी गाढ़ा बनाया जाए। दूसरा कारण भगवान श्री कृष्ण का गिरने का यह था कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा से वृंदावन में जा रहे थे। मथुरा में कौन से कृष्ण निवास करते हैं? देवकी नंदन, वसुदेव सुत। और वृंदावन में कौन निवास करते हैं? यशोदा नंदन, नंद सुत। तो दोनों में अंतर है, हैं वही कृष्ण लेकिन फिर भी अलग है, रस में अलग है। वृंदावन के कृष्ण यशोदा नंदन में और मथुरा के कृष्ण देवकी नंदन में रस का बड़ा अंतर है। इसलिए यमुना जी मथुरा और वृंदावन के तट पे है। तो अभी श्री कृष्ण परिवर्तन कर रहे हैं, अपने भूमिका बदल रहे हैं, रोल बदल रहे हैं, पोशाक बदल रहे हैं। अभी देवकी नंदन से यशोदा नंदन बन रहे हैं, तो कोई चेंजिंग रूम चाहिए ना। जब ड्रामा में पोशाक बदलने की कोई कमरा होता है ना पीछे, जहां पे कोई देखे नहीं, तो जल्दी से वही आदमी एक राजा का रोल करता है और फिर जल्दी से कपड़े पहनकर फिर ऋषि का रोल करके आ जाता है, जल्दी से पीछे पर्दे के पीछे जाकर। तो यमुना जी का जल भी एक ऐसे पर्दा था जिसमें कि भगवान देवकी नंदन से अभी यशोदा नंदन हो गए और आए, ऐसे भी आचार्य बताते हैं। तीसरा कारण ये था जो हमारे कथा के लिए भी जिस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि वो यमुना जी को कृपा देना चाहते थे। यमुना जी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करना चाहती थी, बहुत आतुर थी कि उनके चरण कमल को धूली मेरे मुझे स्पर्श करे। तो वसुदेव ने इतने अच्छे ढंग से टोकरी पकड़ी हुई थी कि अगर श्री कृष्ण स्वयं नहीं गिरते पानी में तो यमुना देवी के ऊपर कृपा करने की संभावना नहीं रहती। तो यमुना देवी के ऊपर कृपा करके भगवान उस जल में गिर पड़े, और जब कृपा बरसा दी यमुना जी के ऊपर तो खुद ब खुद वसुदेव के आंखों के सामने फिर से उन्होंने वो प्रकट हो गए। तो वसुदेव को जान आ गई फिर से हृदय में, फिर से टोकरी में रख दिया कृष्ण को और आगे चल पड़े। तो यमुना देवी इतने भाग्यशाली थीं कि कृष्ण भगवान के प्राकट्य के समय से ही उन्हें कृष्ण लीला का कृष्ण को साथ देने, लीला में सहायता करने की का मौका उनको मिल गया। और वैसे भी जब श्री कृष्ण बाल्य लीला कर रहे थे तो यमुना जी में आते थे, और जब कुमार अवस्था में गायों को वत्सों को चराय करते थे तब भी यमुना जी में आके खेल क्रीड़ा करते थे, जल क्रीड़ा जल विहार, ग्वाल बालों के संग में नहाते थे, यमुना जी का पानी पीते थे, उनके गौएं भी यमुना जी के पानी पीते थे, और आगे चलकर पौगंड अवस्था में भी धीरे धीरे से जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ में लीला करना आरंभ किया उस समय भी गोपियों के साथ में आकर यहां लीला करते थे। यमुना के तट पर जो भी सारे गुह्यतम लीलाएं हुई हैं, मधुर से मधुर लीलाएं ब्रज में हुई हैं, वो कालिंदी के तट पर हुए हैं, यमुना जी के तट पर। भगवान ने बांसुरी वहां बजाई, प्रिय स्वयं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मेलितास तथा हम साराधा तद इदम उभयो संगम सुखम। ये जो कृष्ण ने यहां पर लीला किए थे वृंदावन में उसका स्मरण गोपियां कुरुक्षेत्र में जाके कर रही हैं कि हम वो कृष्ण को देखना चाहते हैं, कुरुक्षेत्र वाले या द्वारका वाले कृष्ण को नहीं, हम उस कृष्ण को देखना चाहते हैं जो कालिंदी के तट पर पंचम नोट में मुरली बजा रहे हैं, और उस कृष्ण को देखना चाहते हैं कालिंदी वने कालिंदी तटे कालिंदी के तट पर वंशी वट के नीचे बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण। तो यमुना जी ने ये सारे लीलाएं देखी हैं, इनमें उन्होंने भाग लिया है, भगवान श्री कृष्ण की सहायता की है उन्होंने, तो यह है यमुना जी का सौभाग्य। इसलिए गंगा देवी ने जब सोचा कि यमुना देवी को इतना अच्छा अवसर मिला, मेरी प्रशंसा सभी लोग करते हैं कि मैं चरणामृत हूं भगवान की, मुझ में स्नान करने से लोगों को मुक्ति मिलेगी, लेकिन मैं तो इतनी भाग्यशाली नहीं हूं, यमुना देवी मुझसे बहुत ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि यमुना देवी के जल में भगवान ने कितना विहार किया, कितने सारे लीलाएं किए, लेकिन मेरे जल में तो कभी भगवान ने ऐसी क्रीड़ा नहीं की। तो गंगा जी ऐसी तीव्र इच्छा हृदय में रख रही थी, और इसीलिए भगवान ने गंगा जी की इच्छा भी पूरी की। कब? चैतन्य महाप्रभु के समय। चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब वही श्री कृष्ण प्रकट हुए तो वो रमण किया करते थे अपने बाल्य लीला और पौगंड लीला में, जाके शरारत वहां करते थे, कूद जाते थे वहां पे, जाके जो ब्राह्मण वहां गायत्री कर रहे होते थे कमर तक पानी में खड़े, उनके जाके नीचे टांग खींच लेते, कभी उनको जल छिड़कते उनके ऊपर, और जो सामग्री बसाकर बैठे थे नदी के तट पर और अपने ध्यान के लिए अपनी पूजा के लिए सब में पानी फेंक कर सब गीला कर देते, और जिन्होंने अपने कपड़े तट पर रखे थे उसके ऊपर पानी छिड़क के सब कपड़े गीले कर देते थे। तो इस प्रकार से वही श्री कृष्ण ने ऐसे सुंदर कौमार लीला पौगंड लीला गंगा जी में भी किए, लेकिन फिर भी शास्त्र में बताया जाता है कि यमुना जी का सौभाग्य कितना है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु यमुना जी के तट पर गए थे तो उन्होंने एक श्लोक का उच्चारण किया, उस श्लोक को बोलकर ही यमुना जी को दंडवत करते और फिर वो यमुना जी में स्नान करने जाते। चिदानंद भानो सदानंद सुनो
पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री अघानाम लवित्री जगत क्षेम धात्री पवित्री क्रियान्नो वपुर्मित्र पुत्री।
हमेशा चैतन्य महाप्रभु यमुना जी के गुणगान में ये श्लोक बोलते थे। इसका मतलब क्या है? चिदानंद भानो कि हे यमुना देवी, आप चिदानंद हैं, चिदानंद के स्वरूप हैं आप। केवल आप में स्नान करने से दिव्य आनंद की प्राप्ति हो सकती है। आप दिव्य आनंद के मूर्तिमान बहते हुए रूप हैं। मतलब यमुना जी का जल ये कोई साधा जल नहीं है, ये दिव्य आनंद का बहता हुआ एक रूप है। सदानंद सुनो पर प्रेम पात्री। नंद सुनो मतलब भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण हमेशा आपको ऐसे प्रेम प्रदान करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण को सदा प्रेम प्रदान करने वाले नंद सुनो आप यमुना जी हैं। तो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति में यह क्षमता है कि वो भगवान श्री कृष्ण को सदा प्रसन्न करे, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई विशेष भक्त है भगवान के। सदानंद सुनो पर प्रेम पात्री। तो भगवान श्री कृष्ण को सदा प्रेम प्रदान करने वाली हे यमुना देवी, द्रव ब्रह्म गात्री, आप ब्रह्म द्रव हैं, आप कोई साधारण जल नहीं। ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक। दूसरे शब्दों में यमुना जी का जल पूरी तरह से आध्यात्मिक है, ये भौतिक जल नहीं है। और इसलिए इसमें यह शक्ति है अघानाम लवित्री। अघ मतलब पाप, सारे पापों को नष्ट करने की जो शक्ति यमुना देवी में है। अघानाम लवित्री जगत क्षेम धात्री, सारे जगत भर में कल्याण फैलाने की क्षमता भी यमुना देवी में है। इसलिए ये श्लोक में चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते थे पवित्र क्रियान्नः, आपके पवित्र कार्यों से हमें शुद्ध कर दीजिए। हे वपुः मित्र पुत्री, मित्र पुत्री मतलब सूर्य देव की पुत्री। तो इसी यमुना जी में, इसी कालिंदी में, यहां पर ये ग्वाल बाल कृष्ण के संग में लीला करने आए हैं। और इसलिए यहां सुखदेव गोस्वामी बताते हैं विलोक्य दूषिताम कृष्णाम। तो ये कृष्णा जो कि इतनी पवित्र है, द्रव ब्रह्म गात्री, चिदानंद भानो, अघानाम लवित्री, जिन गुण, ये गुण जो यमुना जी में हैं, वो आज विष से दूषित हो गई है। तो कृष्ण को देखकर अच्छा नहीं लगा। कृष्ण विभुः, कृष्ण विभु हैं, हम अणु हैं। तो अब विभु होने के नाते वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा कब ये समस्या का समाधान करना चाहिए कि ये जो द्रव ब्रह्म गात्री है, आध्यात्मिक जल है, ये आज दूषित हो गया है, इसको भी ठीक करना चाहिए। तो वह आए और फिर उन्होंने देखा कि ये जो जल दूषित है, किसने जल दूषित किया हुआ है? कृष्णा हिना, कृष्ण अहिना, अहिना या अहि मतलब सांप, कृष्ण मतलब काला, तो काला सांप, कालिया। इसका मतलब है कृष्ण ने देखा कि कृष्णा को कृष्ण ही ने दूषित किया है। यह इस शब्द में, श्लोक में है कृष्ण अहि, तो कालिया भी कृष्ण है। तो कृष्ण ने देखा कि कृष्णा को कृष्ण ने दूषित किया है। तो इस प्रकार से जब देखा तस्य विशुद्धिम अन्विच्छन, तो उन्होंने चाहा कि मैं अभी यमुना देवी को शुद्ध करना चाहता हूं। सर्पम तम उदावस उदवासयत, तो इसलिए उन्होंने इस सांप को बाहर भेज दिया। तो ये काले दमन की लीला भगवान श्री कृष्ण ने क्यों की? पहली बात तो यमुना जी को शुद्ध करना चाहते थे, क्योंकि यमुना जी उनकी भक्त हैं। दूसरी बात, वो ब्रजवासियों को आनंद देना चाहते थे, ब्रजवासियों को सुविधा देना चाहते थे कि वो यहां पर आके आराम से बैठे, यमुना जी का जल पान करें, गांवों को भी यहां आकर वो पान कर सकें। तीसरी बात, जो बाहर से, ब्रज के बाहर से जो तीर्थ यात्री आते थे, उनकी सुविधा के लिए इस स्थान को वो शुद्ध करना चाहते थे। और चौथी बात, वो कालिया के ऊपर कृपा बरसाना चाहते थे। अब इतने लोगों के ऊपर उन्होंने कृपा बरसाई कालिया दमन लीला करने के बाद, ब्रजवासियों के ऊपर, बाहर के लोगों के ऊपर, हम सब के ऊपर, क्योंकि हम सब ये लीला सुन सकते हैं भगवान की। इतने लोगों के ऊपर उन्होंने कृपा की, लेकिन सबसे बड़ी कृपा किसके ऊपर हुई? कालिया के ऊपर। क्योंकि ये कालिया नाग इतना दुष्ट असुर होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श उसके सरों से हुआ, तो इससे बड़ा सौभाग्य कौन सा है। कालिया वास्तव में महातल में रहा करता था। महातल मतलब जो और नीचे के लोक हैं, भूलोक के नीचे हैं तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, फिर आगे चल के रसातल इत्यादि। तो ये महातल में बहुत सारे भयानक नाग रहते हैं भगवान की योजना से, बड़े बड़े नाग, थोड़ों के एक फण, किसी के दस, किसी के सौ, किसी के हजार फण, हजार फणों वाले विषैले जहरीले विष धारण करने वाले बड़े सांप, और इनके फणों पे मणियां रहती हैं, और इन मणियों के प्रकाश से वहां प्रकाश होता है, वहां कोई सूरज नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि एकदम नीचे है, ये महातल में है, केवल इनके फणों में मणियों जो है उनसे ही रोशनी जो भी है वो मिलती है। तो बड़े खतरनाक, बड़े बड़े विषैले सांप होते हैं ये। तो वहां पर कालिया रमणिक द्वीप में वो रहा करता था, लेकिन वहां पर एक इतिहास हुआ, गरुड़ जी के साथ कोई झगड़ा हो गया। क्या झगड़ा हुआ वो आगे चल के हम देखने वाले हैं, लेकिन उस झगड़े की वजह से कालिया वहां से भाग कर आ गया था, और भाग कर उसने यहां कालिया हृदय में आश्रय लिया हुआ था, क्योंकि यहां पर सौवर मुनि का आशीर्वाद था, या कहिए शाप था गरुड़ जी के ऊपर, कि गरुड़ जी यहां प्रवेश नहीं कर सकते, अगर यहां प्रवेश करेंगे तो मर जाएंगे, उसकी लीला भी बाद में चर्चा करेंगे। इसलिए ये एक बहुत सुरक्षित स्थान था कालिये के लिए, तो कालिये यहां आ गया था और यहां पे निवास करता था। और जब सर्पम तम उदवासयत, निर्वासित कर दिया उस समय कालिया को भगवान श्री कृष्ण ने, तो जो कालिया है फिर से वहां रमणिक द्वीप में चला गया। तो फिर प्रश्न ये आता है कि उस समय फिर गरुड़ ने क्यों नहीं खा लिया कालिया को? गरुड़ का काम है सांपों को खाना। लेकिन उस समय गरुड़ ने देखा कि अब कालिया के सर में मेरे प्रभु के चरण चिन्ह है, तो इसलिए अभी मैं उनको छू नहीं सकता हूं, चिन्ह लगा दिया है कि अभी यूनिफॉर्म पहन लिया उन्होंने वैष्णव का, अभी वैष्णव को मैं खा नहीं सकता। साधारण सांप है वो मेरे लिए भक्ष्य वस्तु है, लेकिन वैष्णव को कैसे खा सकता? तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का जो चिन्ह है वो कालिया के सर को सुशोभित करते थे, इसलिए इतनी बड़ी कृपा कालिया के ऊपर हुई। और आगे चल के भी कितनी ज्यादा कृपा हुई भगवान की कालिया के ऊपर, इसका भी वर्णन सुखदेव गोस्वामी विस्तार में करने वाले हैं। तो इस तरह से कालिया भी यहां पर आए थे, और कालिया को भगवान श्री कृष्ण ने वहां से उद्वासित कर दिया, वहां से निकाल दिया। इस प्रकार से वृंदावन में रहने के लिए भी कोई योग्यता चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति वहां रह सकता है। जो व्यक्ति द्वेषी है, जो व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, पापी है, वो भला कैसे वृंदावन में रह सकता है? भगवान उसको वहां से निकाल ही देंगे। इसलिए भगवान के भक्ति मार्ग में, भगवान के धाम में केवल वही लोग रह सकते हैं जो कि बहुत शुद्ध है, जिनके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा है, भक्ति भाव है। तो आगे चल के क्या हुआ फिर? जब सुखदेव गोस्वामी ने एक ही श्लोक में सब कुछ खत्म कर दिया, तो परीक्षित महाराज संतुष्ट नहीं हुए। भगवान के शुद्ध भक्त थे तो वो और भी रस का पान करना चाहते थे। किसी लीला को बस एक श्लोक में समाप्त कर दिया, उसको अच्छा नहीं लगा, तो क्या कहने लगे? प्रश्न पूछने लगे। श्री राजोवाच, कथम अंतर्जले गाधे
न्यगृणाद् भगवान् अहिम् सवै बहो युगावासम् यथासीद् विप्रकथ्यताम्।
कथम, कैसे अंतर्जले अगाधे न्यगृणाद् भगवान् अहिम्। ये कैसे है कि ये अहिम, ये जो सांप जो कि अंतर्जले जल के भीतर था और जल बहुत अगाध था, बहुत गहरा, बहुत विशाल था, उसके भीतर भगवान ने न्यगृणाद इस सांप का दमन कैसे किया, कथम। केवल इतना सुनने से संतुष्ट नहीं थे परीक्षित महाराज कि भगवान ने भगा दिया। कैसे भगा दिया? इतना बड़ा सांप, जहरीला सांप, इतना विशाल सांप जो कि महातल से आया है, कैसे भगवान ने इसका दमन किया? सवै बहु युगावसाम यथासीत विप्रकथ्यताम। बहु युग आवासम, बहुत लंबे समय से आवास स्थान बना लिया था उसने, निवास स्थान बनाया था यमुना जी को। इतने लंबे समय रहने के बाद उसको कैसे भगवान ने हटा दिया वहां से? कथ्यताम, किस प्रकार से ऐसा हुआ? जैसे आप सबको मालूम है, कोई किराएदार लंबे समय से किसी घर में रहता है तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, कितने युगों से ये कालिया नाग इस यमुना जल में रहता है, तो ये कैसे संभव है कि भगवान ने उसे इतने आसानी से भगा दिया? कोई कोर्ट केस नहीं हुआ, कोई पुलिस नहीं आए, कुछ वारंट नहीं आया, कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ, पगड़ी नहीं दी, कुछ नहीं, तो कैसे भेज दिया?
ब्रह्मन् भगवत्तस्य भूम्ना स्वच्छंदवर्तिनः गोपालोदार चरितम् कह त्रिप्पे ताम्रतम जुषम।
हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, भगवान जो कि भूम्ना, भूमा मतलब जो पूर्ण है हर दृष्टि से, भूम स्वच्छंदवर्तिनः मतलब जो अपने इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। हम अपनी इच्छा से कार्य नहीं कर सकते, हम दूसरे के ऊपर हमेशा निर्भर होते हैं और खास करके भगवान के ऊपर। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। स्वाभाविकी ज्ञानत बल क्रियाच, अपने इच्छा मात्र से वो जो चाहे वो संपन्न कर सकते हैं। इसलिए स्वच्छंद वर्तिनः, और ऐसे जो विभो भूमा जो कि भगवान है, जिन्होंने ऐसे सुंदर सुंदर गोपालन की लीला की, गोपाल उदार चरितम, ऐसे सुंदर लीलाएं भगवान ने गोचारण इत्यादि की किए, कह तृप्य अमृतम जुषान, जिसको सुनकर कोई भी व्यक्ति तृप्त नहीं हो सकता, इसको बार बार सुनने की इच्छा होती है, ये भगवान की लीला है, जिसका श्रवण कीर्तन बार बार करने से भी हृदय तृप्त नहीं होता। वयम तुन वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् श्रृण्वताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। नैमिषारण्य में एकत्र हुए ऋषियों ने भी श्रुत गोस्वामी से ही कहा कि आप यह मत सोचे कि हम थप जाएंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जैसे जैसे आप हरि कथा करते जा रहे हैं, वैसे वैसे स्वाद बढ़ते जाता है, स्वादु स्वादु पदे पदे, और ऐसे स्वाद इतना अच्छा है कि हम चाहते हैं कि हम बार बार इसे लेते रहें, हम थक नहीं जाते हैं। तो ये कृष्ण कथा की खूबी है कि बोलने वाले भी थक नहीं जाते और आप जैसे सुनने वाले भी कभी थकते नहीं हैं, कभी भी नींद नहीं आती, कभी भी प्रसाद के बारे में सोचते नहीं है, कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि कब ये समाप्त करेंगे और कब हम यहां से निकल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं सोचते। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि कृष्ण कथा ये कितनी सुंदर है, मैं ज्यादा से ज्यादा और सुनना चाहता हूं। और फिर परीक्षित महाराज को भी उत्साह बढ़ जाता है, क्योंकि जब श्रोतागण उनमें उत्साह होती है तो वक्ता को भी थोड़े बहुत उत्साह मिल जाता है। तो फिर सुखदेव गोस्वामी उत्साहित होकर और आगे बोलने जाते हैं, कालिया दमन की लीला में क्या हुई, तो आगे चलकर क्या हुआ ये हम कल सुबह चर्चा करेंगे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कोई टीका
हरे रहता तो बीच में कैसा पानी विचारी होगी,
ये हम कल देखने वाले हैं। कालिया जिस स्थान में रहता था उसको कालिया ह्रद कहते थे, एक तालाब था। जो आचार्य समझाते हैं कि जमुना जी का जो मुख्य प्रवाह था उससे थोड़े हटकर था ये। अगर हटकर नहीं होता, अगर मुख्य प्रवाह में ही होता तो सारे जमुना जी मथुरा और आगे तक भी प्रदूषित हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं था। केवल कालिया ह्रद ही प्रदूषित था और उसके इर्द गिर्द में जो वहां जो जगह थी वो भी प्रदूषित हो गई। तो आचार्य ऐसे समझाते हैं कि कालिया ह्रद एक अलग से हटके एक तालाब था, यमुना जी का जल ही उसमें जा रहा था।